मेरे प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। आज 26 मार्च 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं अर्णव सिंह, आपका गांव है दानापुर जिला पटना बिहार, सोनाली शर्मा आप हैं मंदसौर मध्य प्रदेश से, शिवानी शर्मा आप भी मंदसौर मध्य प्रदेश से हैं, हर्ष कुमार तिलहर उत्तर प्रदेश से, आदित्य कुमार इस्लामपुर जिला नालंदा बिहार से और नेहा सिंह आरा बिहार से। तो अर्णव, सोनाली, शिवानी, हर्ष, आदित्य और नेहा आप सभी 6 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय में मैं आपसे बड़े कुछ उठपटांग सा जान पड़ने वाले विषय पर बात करने जा रहा हूं और इसका शीर्षक है पोल वाल्टिंग। हालांकि इस टाइटल को अगर आप अपने सिविल सर्विस के सिलेबस में ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बट नेचुरल है कि अगर मैंने इस विषय को चुना है तो डेफिनेटली आपके लिए ही चुना है और आपके फायदे के लिए ही चुना है। आज मैं इस पर बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। सच पूछे तो अभी तो हमारे जो मीडिया हैं, चाहे रेडियो हो या दूरदर्शन हो या अखबार हो, सबके सब चुनावी खबरों से भरे हुए हैं, जो एक स्वाभाविक बात भी है। और चूंकि चुनावी दौर में सरकार भी कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकती है, इसलिए भी सरकार के पक्ष से भी कुछ ऐसी खबरें नहीं है जिन्हें हम लेकर के बातचीत कर सकें, लेकिन इस अवसर का हम लोग भरपूर लाभ उठाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी चीजें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं और हमारे पास बात करने के लिए कुछ भी टॉपिक नहीं बचा है, हमारे पास टॉपिक है। पहली बात, आपने न्यूज में सुना होगा कि कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा की है कि यदि उनकी सरकार आई तो 20% गरीबों को 72,000 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से पैसा देगी, धन देगी। इसे आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम कह लें या यूं कह लीजिए कि गरीबी दूर करने के एक माध्यम के रूप में सरकार के द्वारा उठाया गया कदम आप कह लें, जो भी कह लें, 72,000 रुपए प्रति वर्ष, यानी कि यूं कह सकते हैं कि 6,000 रुपए प्रति माह 20% गरीब परिवारों को। अब देखिए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि लगातार चुनाव में इस तरह की घोषणाएं होती हैं। स्टेट जब चुनाव हुए थे, किसानों के कर्ज माफी की बात हुई, इससे पहले भी अलग अलग तरीके से सरकारें अपने अपने ढंग से लोगों को गरीबी से मुक्त कराने के उपायों की घोषणा करती रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि इन उपायों में कहीं ठोस ऐसा उपाय दिखाई नहीं देता कि वो हमेशा हमेशा के लिए गरीबी से मुक्त हो जाए। यहां कुछ इस तरह की भावना ज्यादा दिखाई देती है कि भूख लगी है, मछली दे दो खाने को, मछली पकड़ने सिखाने की बातें दिखाई नहीं देती हैं। और अभी जो कांग्रेस ने जिसकी घोषणा की है उसको लेकर के अर्थशास्त्री एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, और वो ये है कि इतना धन अल्टीमेटली आएगा कहां से, क्योंकि यदि इसे कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 3,60,000 करोड़ रुपए हर साल जरूरत होगी। और बकायदे उसमें यह भी कहा गया है कि जो दूसरी योजनाएं चल रही हैं सब्सिडी वगैरह, उनमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। तो ये एक तथ्य है, आपको बस ध्यान में लाना है, क्योंकि जब कभी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं कि किस तरह से राजनीतिक जो वायदे होते हैं वो छलावे होते हैं या जनता को आकर्षित करने के लिए या वोट पाने के लिए, तो उसमें आप इसे एक तथ्य के रूप में शामिल कर सकते हैं। और मित्रों, इसको लेकर के मैं आपको एक दो एडिटोरियल कमेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं, उसे पढ़ेंगे तो थोड़ी सी अर्थव्यवस्था की स्थिति का ज्ञान आपको हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपने 2-3 दिन पहले एक खबर पढ़ी है और वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये हर साल वर्ल्ड ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करती है, यानी विश्व में खुशहाली का इंडेक्स कि दुनिया में कौन देश सबसे खुशहाल हैं। चलिए शुरू से आपका पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो जिस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जिसमें आपका फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड ये देश आते हैं, ये लगातार टॉप पे रहते हैं और इसके बाद फिर और देशों का नाम होता है। इसमें भारत का स्थान इस बार 140वां आया है, मतलब टोटल 156 कंट्री हैं जिसमें हम 140वें स्थान पर हैं। इससे पहले हम 133वें स्थान पर थे, यानी कि 7 स्थान हम और नीचे चले गए। ये हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी स्थिति है। देखिए, जब यह हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की जाती है तो उसमें कौन कौन से तत्व शामिल किए जाते हैं, मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि इंडेक्स बनाने का आधार क्या है। पहला तो यह है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, प्रति व्यक्ति जिसको आप कहेंगे जीडीपी क्या है। दूसरा यह है कि जो वहां के नागरिक है उनमें सामाजिक सहयोग की भावना कितनी है, कैसी है। तीसरा है कि सामाजिक स्वतंत्रता कितनी है, सोशल फ्रीडम उस वहां के लोगों को कितनी मिली हुई है। वहां के लोग कितने लिबरल हैं, उदारता कितनी है, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, और फिर स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर क्या है। इनको लेकर के एक इंडेक्स तैयार किया जाता है। भारत की स्थिति इसमें काफी नीचे है। आप देखिए कि 156 में हम 140वें पर हैं, यानी कि नीचे के जो 15-16 हैं वो सब हमारे जैसे ही हैं, जिसमें आप सूडान उड़ान जैसे अफ्रीका के देश हैं वो आते हैं। हमसे बेहतर स्थिति में पाकिस्तान है, हमसे बेहतर स्थिति में चाइना है, हमसे बेहतर स्थिति में बांग्लादेश है। यहां मैं केवल एक प्रश्न आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स जो तैयार किया गया है, जिसके अभी मैंने आपको पैमाने भी बताए हैं, ये कितना सही है, कितना सही है? क्या सही में ये हैप्पीनेस को व्यक्त करता है? क्या हैप्पीनेस जो एक आंतरिक भाव है इसी पर निर्भर करती है? इस पर आप थोड़ा सा विचार करेंगे। इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन की तो मैं अपेक्षा नहीं करता, लेकिन जो आपके जनरल स्टडीज का 4th पेपर है उसमें यदि आप विचार करके कुछ तथ्य हासिल करेंगे तो शायद कुछ काम आ जाए। मुझे अगर कभी अवसर मिला तो मैं डेफिनेटली इस पर बात करूंगा। फ्रेंड्स, एक और आपको मैं एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं राष्ट्रीय सहारा का, और जिसमें एक अच्छी खबर यह है कि जो ISIS नाम का खूंखार आतंकवादी संगठन था, लगभग उसका सफाया किया जा चुका है। IS का जो पहला है वो तो आपको मालूम है, सीरिया, और दूसरा है इराक, ISIS। तो इराक से ये पहले ही खत्म हो चुके हैं, और अब सीरिया में भी, सीरिया का पूर्वी सीरिया का एक गांव है बागुज, इसको याद रखिएगा, कभी कभी इस तरह के नाम प्री में पूछ लिए जाते हैं, वो अंतिम गांव है जिससे ISIS को पूरी तरह से हटा करके मुक्त करा लिया गया है। और ये बड़ी बात यह है कि चूंकि इन सब मामलों को लेकर के रूस और अमेरिका में आपसी मतभेद भी थे, इसके बावजूद ये सफलता मिली है और दुनिया ने इससे बहुत राहत की सांस ली है। फ्रेंड्स, एक मैं आपको बहुत अच्छा आर्टिकल आज प्रोवाइड कर रहा हूं, और वो है डॉक्टर भरत झुनझुनवाला का। इस आर्टिकल को मैं अच्छा इसलिए कह रहा हूं कि इसमें भारत और चीन की स्थितियों की उन्होंने बहुत अच्छे से तुलना की है। पहले मैं इसी को मुख्य विषय के रूप में शामिल करना चाह रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो आर्टिकल के रूप में आप सबको मिलेगा ही और आप सब इसे बहुत अच्छे से समझ भी लेंगे, इसलिए मैंने इसकी चर्चा नहीं की है। एक बात मैं जरूर आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि देखिए, आप किसी भी आर्टिकल को सीधे तौर पर पढ़ करके और छोड़ देते हैं तो उससे बात बनती नहीं है। आपको एक आत्मसंतोष मिल सकता है कि मैंने आर्टिकल पढ़ लिया, लेकिन यदि वह पढ़ा हुआ आपके दिमाग में मौजूद नहीं है तो किस काम का, फिर तो वह बेकार है। इसलिए आपको चाहिए कि जब भी आपको बहुत अच्छे आर्टिकल्स कुछ पढ़ने को मिलते हैं तो आप उसमें से पॉइंट्स नोट कर लें। जैसे इस आर्टिकल में डॉक्टर भरत झुनझुनवाला ने, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखते हैं, बहुत अच्छे से समझाया है कि भारत और चीन में जो आज इतना अंतर दिखाई दे रहा है उसके क्या रीजन हैं। उन्होंने 1980 से अपनी बात शुरू की थी कि 1980 में चीन और भारत की अगर प्रति व्यक्ति आय की हम तुलना करें तो चीन हमसे थोड़ा सा ज्यादा था, 1.2 गुना बस। जैसे मान लीजिए कि हमारी इनकम अगर 100 रुपए थी तो चीन की इनकम 120 रुपए थी, और आज स्थिति यह हो गई है 1980 के बाद से 40 सालों के दौर में कि उसकी जो इनकम है हमसे 4.4 टाइम्स हो चुकी है, 4 गुना बढ़ चुकी है। तो आखिर में उसने ऐसा क्या किया, उसको लेकर के बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बात लिखी है। इसमें आप बकायदे एक साइड में भारत लिख सकते हैं और दूसरे साइड में चाइना लिख सकते हैं और बकायदे आप तुलना कर सकते हैं कि चाइना ने विदेश निवेश के बारे में क्या किया, हमने क्या किया, चाइना ने विनिर्माण उद्योग के बारे में क्या किया, हमने क्या किया, वहां की ब्यूरोक्रेसी है कैसी, हमारी ब्यूरोक्रेसी कैसी है, वहां स्वास्थ्य और शिक्षा में क्या हुआ, हमारे यहां क्या हुआ, उन्होंने इनोवेशन को कैसे लिया, हमने इनोवेशन को किस तरीके से लिया। तो इस तरीके से बाकायदे आपको कुछ बहुत ठोस पॉइंट मिलेंगे और ये लगातार लंबे समय तक आपकी मदद करते रहेंगे। इस आर्टिकल का आप जितने भी अच्छे तरीके से उपयोग करना चाहे मित्रों, यह आपके हाथ में। और सच पूछिए तो यही बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि आप किसी चीज का उपयोग कैसे करते हैं। बात यह महत्वपूर्ण नहीं होती कि आपको अच्छी चीजें ही प्रोवाइड की जा रही हैं, अगर आप उनका उस अच्छी चीज का भी उपयोग करना नहीं जानते तो फिर वो आपके लिए अच्छी नहीं रह जाती। आज के करंट कंटेंट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स प्रोवाइड किया गया है कई अखबारों से पॉइंट्स लेकर के, और उसका टाइटल है इस्लामिक सहयोग संगठन की कूटनीति और भारत। ये इस साल के मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो कई अखबारों में जो व्यूज थे उनका कलेक्शन है, बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है और मैं चाहूंगा कि ये आपके पास, अगर आप अभी मेंस में अपीयर हो रहे हो तो आपके पास ये बकायदे मौजूद रहना चाहिए। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और मुख्य विषय का जो मैंने नाम दिया है बड़ा विचित्र सा है, वो है पोल वाल्टिंग, और ये मेरा दिया हुआ नाम नहीं है। दरअसल अभी एक किताब आई है डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर और रवि पंडित जी की, उस किताब का शीर्षक है फ्रेंड्स लीप फ्रॉगिंग टू पोल वाल्टिंग क्रिएटिंग द मैजिक ऑफ रेडिकल एट सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। नाम लंबा है और मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं ये बकायदे आज के बिजनेस स्टैंडर्ड में आर्टिकल के फॉर्म में छपा हुआ है और ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वहां से आप इसे नोट कर सकते हैं। इसमें इन्होंने पोल वाल्टिंग को एक ऐसी व्यवस्था बताई, अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई एक प्रणाली बताई है जिसमें चार लीवर होते हैं। चार लीवर आप समझते हैं, लंबा सा रॉड जैसा है और जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और काम करते रहते हैं। तो उन्होंने चार लीवर वाली व्यवस्था एक बताई है और ये चारों लीवर एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं, यानी कि ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते। तो यहां आपको अर्थव्यवस्था की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में जानने को मिलेगा, इसलिए मैंने इस नए विषय को चुना है। देखिए वो क्या कहते हैं कि जो पहला लीवर है वो है टेक्नोलॉजी, और उन्होंने कहा है कि जब हम टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं तब हमारे दिमाग में यह बात बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी कुछ भी कर सकती है, उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। बट नेचुरली कि जब हम यह सोचेंगे तभी हम इनोवेशन की तरफ जा सकेंगे और नई नई टेक्नोलॉजी अपने लिए तैयार कर सकेंगे। दूसरा लीवर उन्होंने कहा वो है जन नीति, यानी कि पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि सरकार को बहुत ही सावधानी के साथ इस बात पर विचार करना चाहिए कि कब वह हर अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करे और कब उसे अर्थव्यवस्था को बिल्कुल फ्री छोड़ देना चाहिए। इसे उन्होंने कहा है जन नीति यानी कि पब्लिक पॉलिसी। हमारी जो अर्थव्यवस्था रही है शुरू की तो पूरी तरह से हस्तक्षेप की ही व्यवस्था रही है, सरकारी प्रतिबंध की व्यवस्था रही है। आपको मालूम है कि लिबरलाइजेशन के बाद उसमें थोड़ी सी छूट दी गई है, लेकिन अभी भी हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत जबरदस्त सरकार का हस्तक्षेप है। तो उनका यह कहना है कि ये सेकेंड लीवर है, सरकार को बहुत सोच समझ कर इस बारे में कदम उठाना चाहिए। तीसरा लीवर उन्होंने कहा है सामाजिक संबद्धता, सोशल रिलेवेंसी। सामाजिक संबद्धता का मतलब है कि हमें टेक्नोलॉजी के जरिए जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो जो उत्पादन है वो हमारी बड़ी आबादी के लिए उपयोगी हो, यानी कि केवल थोड़े से लोगों को उससे फायदा मिलेगा या उस उत्पाद का उपयोग करने की हैसियत केवल थोड़े से लोगों के लिए होगी, वही उसका उपयोग कर सकेंगे, तो फिर वह उत्पाद देश को आगे ले जाने में सहायक नहीं हो सकता। इसे उन्होंने नाम दिया सामाजिक संबद्धता, यानी कि ऐसा उत्पाद हो जिसका ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर सके। फिर चौथे लीवर में वो कहते हैं आर्थिक मॉडल। अब आप देखिए कि आपने एक ऐसी चीज बना ली है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए उपयोगी है। उदाहरण के तौर पर चलिए हम मोबाइल फोन की बात करें, ठीक है, लेकिन अगर वो बहुत महंगी है तो सीधी सी बात है कि वो कुछ लोगों तक सिमट कर रह जाएगी, लेकिन अगर आपने उसे सस्ता कर दिया तो आज देखिए कि वो मोबाइल फोन ठेले वाले के पास भी है, जो मेड सर्वेंट है उसके पास भी है, ड्राइवर हर के पास है, और तभी हम भी उसका सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बहुत धनी व्यक्ति है, पूंजीपति है और बहुत महंगा मोबाइल फोन है, तो उसका ड्राइवर तो नहीं रख सकता, और ड्राइवर से उसे बात करनी है तो या तो वो अपनी तरफ से खरीद करके देगा, अदरवाइज बात खत्म हो गई। तो बड़े लोगों के लिए भी जो टेक्नोलॉजी है उपयोगी तभी होती है जब वो जन जन तक पहुंच सके। तो इसके लिए आर्थिक मॉडल ऐसा अपनाया जाना चाहिए कि जो हर कोई उसे अफोर्ड कर सके। तो दोस्तों ये उन्होंने पोल वाल्टिंग के ये चार लीवर बताए हैं, राइट, मैं रिपीट कर देता हूं। पहला तो यह है कि पहला लीवर टेक्नोलॉजी है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरा लीवर पब्लिक पॉलिसी है, सरकार को सोच समझकर हस्तक्षेप करना चाहिए। तीसरा लीवर सोशल रेलिवेंसी है, सामाजिक संबद्धता है, यानी कि ऐसा उत्पाद किए जाए जो समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए उपयोगी है। और चौथा लीवर है आर्थिक मॉडल, यानी कि उसकी कीमत ऐसी रखी जाए जो ज्यादा से ज्यादा लोग उसे अफोर्ड कर सके। तो मित्रों ये आज के मुख्य विषय के बारे में है, इससे संबंधित मैं आर्टिकल भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। जहां तक प्रेस क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं दूसरी प्रेस क्लिपिंग्स भी आज आप लोगों को अवेलेबल करा रहा हूं, जिनकी संख्या आज कुछ ज्यादा ही हो गई है, लेकिन सभी आवश्यक हैं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं राम भजन गुर्जर, सूरज यादव, मुकेश यादव महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, पुनीत वर्मा, अमित कुमार प्रयागराज से, और रविता रोडिया। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।